नमस्कार, आज हम ज्योमेट्री के एक बहुत ही बुनियादी पर हाँ बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर बात कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स, यानी रेखाएं और कोण।
बिल्कुल।
कभी सोचा है रेलवे ट्रैक्स हमेशा साथ साथ क्यों चलते हैं, कभी मिलते क्यों नहीं? या फिर जैसे बढ़ई एकदम सीधी शेल्स बना लेते हैं, कैसे? ये सब ज्योमेट्री है।
सही कहा, ये सब ज्योमेट्री के सिद्धांत हैं।
तो आज का हमारा लक्ष्य है कि इस अध्याय की जो मुख्य बातें हैं उन्हें जल्दी से समझें, एक तरह से जरूरी बातों का रीकैप करें।
बिल्कुल। और ये कॉन्सेप्ट, जैसा आपने कहा, ज्योमेट्री की नींव हैं। आप देखिए, पुरानी सभ्यताएं भी थीं, इजिप्शियंस, बेबिलोनियंस।
हाँ,
यूक्लिड का नाम तो सबने सुना ही है। भारत में भी सुल्बा सूत्रों में इनका जिक्र मिलता है।
अच्छा,
तो उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद हम इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस में फर्क समझ पाएंगे।
और कोणों को पहचान पाएंगे।
हाँ, अलग अलग कोणों को पहचानना और सबसे जरूरी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच जो रिश्ते बनते हैं उनको समझना।
ठीक है, तो फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और प्लेन, यानी एक फ्लैट सरफेस।
जी, बेसिक्स।
पर आज हम खास तौर पर तीन तरह की रेखाओं पर ध्यान देंगे। पहली है इंटरसेक्टिंग लाइंस,
जो एक पॉइंट पर मिलती हैं।
हाँ, जो एक कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं। दूसरी है परपेंडिकुलर लाइंस, जिनका निशान होता है टी।
ये इंटरसेक्ट तो कर दी हैं, पर
ठीक 90 डिग्री पर, एक समकोण पर,
बिल्कुल 90 अंश, राइट एंगल पर।
जैसे एक कमरे का कोना है ना।
एकदम सही उदाहरण। और ये याद रखना जरूरी है कि जहां परपेंडिकुलर लाइंस मिलती हैं, वहां चारों कोण 90 डिग्री की होते हैं। सिर्फ एक नहीं, चारों।
अच्छा, और तीसरी तरह की रेखाएं हैं पैरेलल लाइंस, जिन्हें हम ऐसे दिखाते हैं। ये एक ही प्लेन पर होती हैं, पर कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी मिलती नहीं।
और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है वो हमेशा बराबर रहती है, कांस्टेंट।
जैसे रूलर के दो किनारे।
बिल्कुल।
इनका इस्तेमाल तो बहुत जगह होता होगा, आर्किटेक्चर में, खेलों के मैदान बनाने में।
हाँ, हर जगह। और इसमें ये बात अहम है कि वो एक ही प्लेन पर हों, ये उनकी परिभाषा का हिस्सा है। यूक्लिड का जो मशहूर पैरेलल पोस्टुलेट है,
हाँ, सुना है।
वो भी इसी से जुड़ा है कि एक रेखा के बाहर किसी बिंदु से उस रेखा के समानांतर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये ज्योमेट्री का एक बड़ा सिद्धांत माना जाता है।
अच्छा, अब जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां चार कोण बनते हैं। इनमें दो खास तरह के जोड़े होते हैं। एक तो है लिनियर पेयर,
यानी अगल बगल वाले कोण।
हाँ, साथ वाले दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो मिलके एक सीधी रेखा बनाते हैं।
सही।
और दूसरा जोड़ा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का,
आमने सामने वाले।
हाँ, जैसे एक्स बनता है,
हाँ।
तो ऊपर नीचे वाले और दाएं बाएं वाले कोण, इनकी क्या खासियत है?
इनकी खासियत यह है कि ये हमेशा बराबर होते हैं, ऑलवेज इक्वल।
हमेशा, मतलब ये सिर्फ दिखने में बराबर नहीं लगते, कोई गणितीय कारण है इसका?
बिल्कुल, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका कारण भी लिनियर पेयर प्रॉपर्टी ही है। सोचिए,
कैसे?
मान लीजिए दो रेखाएं कट रही हैं और कोण बने एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एक के बाद एक।
ठीक है,
ठीक है,
ठीक है।
तो एंगल वन और एंगल टू मिलकर एक सीधी रेखा बना रहे, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, लिनियर पेयर।
हाँ,
और इसी तरह एंगल टू और एंगल थ्री भी तो सीधी रेखा बना रहे हैं, तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लिनियर पेयर। अच्छा,
हाँ,
अब देखिए, एंगल वन प्लस एंगल टू भी 180 डिग्री है और एंगल टू प्लस एंगल थ्री भी 180 डिग्री है।
तीन ही।
इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब एंगल वन और एंगल थ्री बराबर होने चाहिए।
बिल्कुल, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल थ्री। इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल फोर। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं।
वाह, ये तो वाकई दिखाता है कि ज्योमेट्री में सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है।
सही कहा।
अच्छा, ये तो हुई दो रेखाओं की बात, पर अगर दो से ज्यादा रेखाएं हों और उन्हें कोई तीसरी रेखा आकर काटे तो?
हाँ, यही पर ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट आता है।
ट्रांसवर्सल मतलब एक ऐसी रेखा जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है।
बिल्कुल। और जब एक ट्रांसवर्सल, मान लीजिए, दो रेखाओं को काटता है, तो वहां कुल आठ कोण बनते हैं। आठ।
आठ कोण?
हाँ, और इन आठ कोणों में भी कुछ खास तरह के जोड़े होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
संगत कोण,
हाँ, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
एकांतर अंतः कोण,
और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल।
तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण। बाप रे, इतने सारे नाम।
हाँ हाँ नाम है, पर एक बार समझ आ जाए तो आसान है।
और मजा तब आता होगा जब वो दो रेखाएं जिन्हें ट्रांसवर्सल काट रहा है वो पैरेलल हों।
बिल्कुल, असली कहानी वहीं से शुरू होती है। अगर वो दो रेखाएं पैरेलल हैं तो फिर इन कोणों के बीच गजब के रिश्ते होते हैं।
जैसे कि
पहला,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंकल्स के जितने भी जोड़े हैं वो सब आपस में बराबर होंगे। अच्छा,
दूसरा,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जोड़े भी बराबर होंगे। तीसरा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होंगे।
सप्लीमेंट्री मतलब
उनका जोड़ 180 डिग्री होगा।
एकदम सही।
और चौथा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये नियम बहुत पावरफुल है।
और मुझे लगता है शायद इसका उल्टा भी सच होता है, मतलब
हाँ बिल्कुल, यही तो बात है। इन नियमों का उल्टा, जिसे हम कॉन्वर्स कहते हैं, वो भी सच है। यानी अगर कोई ट्रांसवर्सल दो रेखाओं को ऐसे काटे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कोई एक जोड़ा बराबर हो जाए, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक जोड़ा बराबर हो जाए,
या फिर सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री हो जाए,
तो हम बिना किसी शक के कह सकते हैं कि वो दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी।
वाह, ये तो बहुत उपयोगी हुआ, बहुत ज्यादा। ये कॉन्वर्स प्रॉपर्टीज उतनी ही जरूरी हैं। इनका मतलब ये है कि अगर हमें सिर्फ एक कोण पता हो और ये पता हो कि रेखाएं पैरेलल हैं, तो हम बाकी के सातों कोण निकाल सकते हैं।
अच्छा, ये तो पजल्स जैसा हो गया।
हाँ, एक तरह से। और इसी वजह से ये डिजाइन में, इंजीनियरिंग में, निर्माण में बहुत काम आता है।
तो फिर इन्हीं एंगल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम पैरेलल लाइंस बना भी सकते हैं, खींच सकते हैं।
बिल्कुल, कई तरीके हैं। एक तो यही है कि आप एंगल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें।
कैसे?
जैसे एक रेखा खींचिए, उस पर एक ट्रांसवर्सल बनाइए। अब किसी दिए गए बिंदु पर कंपस या प्रोट्रैक्टर की मदद से पहले बने किसी कोण के बराबर का अल्टरनेट इंटीरियर या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना दीजिए।
अच्छा।
और उस कोण से होती हुई रेखा खींच दीजिए, वो रेखा पहली वाली के पैरेलल होगी।
समझ गए। और वो एक रूलर और सेट स्क्वायर वाला भी तो होता है, जिसमें सेट स्क्वायर को खिसकाते हैं
और सेट स्क्वायर को उसके किनारे सरकाते हुए रेखाएं खींचते हैं।
वो कैसे काम करता है?
वो इसलिए काम करता है क्योंकि जब आप सेट स्क्वायर को रूलर के सहारे खिसकाते हैं, तो आप असल में एक कांस्टेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाए रखते हैं, इसलिए जो रेखाएं बनती हैं वो पैरेलल होती हैं।
अच्छा, और कागज मोड़ने वाला तरीका?
पेपर फोल्डिंग।
हाँ, वो भी है। एक मोड़ बनाइए, ये एक रेखा हो गई, फिर उस मोड़ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरा मोड़ बनाइए, ये पहली रेखा पर परपेंडिकुलर हो गया।
ठीक है।
अब इस दूसरे मोड़ पर फिर से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए तीसरा मोड़ बनाइए, तो जो पहला मोड़ था और जो तीसरा मोड़ है वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे।
ओह अच्छा, मतलब ये इस बात पर आधारित है कि एक ही रेखा पर परपेंडिकुलर दो रेखाएं आपस में पैरेलल होती हैं।
बिल्कुल।
देखिए, सारे तरीके घूम फिरकर उन्हीं मूल सिद्धांतों पर टिके हैं जिनकी हमने बात की। ये दिखाता है कि कैसे साधारण से लगने वाले नियम इतनी सारी संरचनाओं का आधार बन जाते हैं।
तो ये थी हमारी एक तरह की छोटी सी यात्रा, साधारण रेखाओं से शुरू करके उनके कटने से बने कोण और फिर पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स के खास रिश्तों तक। ये सब जानना कितना उपयोगी है ना?
निश्चित रूप से, रोजमर्रा की जिंदगी में भी और विज्ञान और इंजीनियरिंग में भी।
हाँ,
और ये हमें एक सोचने का नया आयाम भी देता है। देखिए, हमने अभी तक सारी बात की समतल सतह यानी प्लेन पर।
हाँ, फ्लैट सरफेस पर।
जरा सोचिए, अगर सतह फ्लैट ना हो, घुमावदार हो, जैसे कोई गेंद हो या हमारी पृथ्वी की सतह, तो क्या वहां भी पैरेलल लाइंस के यही नियम लागू होंगे? क्या वहां दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता हमेशा सीधी रेखा ही होगी? क्या वहां त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही रहेगा?
अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा, ये ज्योमेट्री की दुनिया को और भी दिलचस्प बना देता है।